अर्जुन सरदुम से कहा कि नादान अब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती मेरे शरीर इस शरीर तय और जाओ बड़ो गधे तुम गुरु को सलाह देते हो। अब वो पुण्य आत्मा थी समझदार थे उसी समय चरणों में गिर गए अक्षमा याचना की बहुत रोए फूट फूट कर प्रभु हमारे से गलती होगी। कबीर साहब कहते हैं जब तो मैं तुम्हें भगवान नजर आऊं था जब दुनिया के दुख दूर हुआ करते अब क्या भगवान बदल गया तुम्हारी बुद्धि मलिन होगी किसी ने तुम्हारा अंतःकरण खराब कर दिया। अब जैसे शीशा होता मिरर जो दर्पण उसमें हमारा अगर वो ठीक है ना दर्पण तो हमारा चेहरा जो का तो दिखेगा जैसा है और यदि उसमें कुछ मलिनता आ जावे अंदर नीचे से उसका कुछ खराबी आ जावे तो ये मुख जो है टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया करे मुख वैसा ही है लेकिन वो दर्पण खराब हो गया। ऐसे ही जब अंतःकरण जीव का मलिन हो जाता है उसको वो परमात्मा तुल संत भी बुरे लगया करे। तो अब तुम्हारी मुक्ति इस रीत से यूं नहीं हो सकती क्योंकि तुमने अब वो भाव बन नहीं सकता जो पहले श्रद्धा थी। अब दोनों बहुत रोए फूट फूट कर रोए प्रभु क्योंकि उनको याद आ गया कि सत्संग में सुना करते कि ना जाने ये मनुष्य शरीर फिर प्राप्त हो ना हो कब होए और फिर पूरे संत मिले ना मिले या सत भक्ति मिले ना मिले इस सब बातों का विचार करके बहुत रोए बहुत रोए रुदन मचा दिया कि प्रभु हमारा कल्याण करो दया करो दाता हम पापियों पर गलती होगी दाता हमारे जजत नहीं थी हमें यकीन तो नहीं हो रहा था लेकिन एक ने दो ने दस ने सौ ने यही प्रमाण दिया दाता बुद्धिहीन जीव हमारे में कमी आई जाती है आप तो जानी जान हो बख्शनहार हो दयालु हो हमारा कल्याण करो मेरे दाता। कबीर साहब ने कहा भाई ठीक है इस शरीर से तो तुम मुक्त नहीं हो सकते चाहे कितनी बात बनाओ चाहे अब मुझे तुम कुछ नहीं वो स्थिति में नहीं जान सकते उस लेवल में नहीं समझ सकते पर जब तक गुरु में पूरी श्रद्धा भगवान के तुल नहीं होगी तो जीव मुक्त नहीं हो सकता। तब कबीर साहब ने कहा भी ठीक है। कुछ वर्षों के बाद मैं फिर कहीं प्रकट होऊंगा और वहां पर अपने कोई पुण्य आत्मा कोई संत तैयार करूंगा उस प्यारी आत्मा से तुम उपदेश ले लेना फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और मैं दिल्ली से 30 किलोमीटर 30 मील की दूरी पर पश्चिम में कहीं भी आ सकता हूं। फिर वो कहते हैं प्रभु आप कब आओगे अभी समय लगेगा सदियों बाद आऊंगा। सदियों बाद आओगे दाता हे मालिक फिर हमारा उद्धार कैसे होगा ये परमात्मा तब तक हमारा शरीर नहीं रहेगा। कबीर साहब ने कहा कि ये मेरी रजा होगी तुम्हारा शरीर लगभग 200-250 वर्ष तक रहेगा। तो इस प्रकार जब वो काफी वृद्ध हो गए उनकी आयु अर्जुन सर्जुन की उस समय 20-25 वर्ष की थी 20-22 वर्ष की और जब कबीर साहब ने आकर मिले उनको यानी गरीबदास जी को मिले छुटानी में उस समय गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे। कबीर साहब ने मगहर में सह शरीर जाने की एक लीला की थी सन 1518 में विक्रमी संवत 1575 में और फिर गरीबदास जी का छुडानी में आदरणीय गरीबदास जी का जो आविर्भाव हुआ विक्रमी संवत 1774 अर्थात सन 1717 में और कबीर साहब का मिलन उनको खेतों में नला खेत में कबलाना साइड गांव है वहां कबलाना उसकी सीमा के पास छुडानी की सीमा में विक्रमी संवत सन 1784 में विक्रमी संवत 1784 में सन 1727 में कबीर परमेश्वर सतलोक से सह शरीर आए और वहां गरीबदास जी को दर्शन दिया और फिर उनको सतलोक लेकर गए फिर उनकी आत्मा को वापस भेज दिया अपना सारी व्यवस्था बता के फिर उसमें अपनी भक्ति प्रवेश कर दी। उस 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हो चुके थे 11 वर्ष के तब आकर 10 वर्ष के को तो उपदेश देने का आदेश हो गया था कबीर साहब से। अब जब वो 11 वर्ष के कबीर गरीबदास जी हो गए थे तब तब अर्जुन सर्जुन को स्वप्न में कबीर परमेश्वर दिखाई दिए। उसमें अर्जुन सर्जुन यह हरियाणा के एक सोनीपत जिला है, उसमें खरखोदा एक सब तहसील है। खरखोदा से आगे, खरखोदा से पहले रोहतक के बीच में एक हमायों पर गांव आता छोटा सा। उस हमायों पर गांव में वो अर्जुन सर्जुन आकर रहने लगे थे। उनका शरीर बहुत पुराना हो गया था, बहुत बूढ़े हो गए थे। वहाँ एक सेवक था उनका, उस सेवक को उन्होंने वहाँ रहने लग गए थे कि यहाँ 30 किलोमीटर अंदाजा सा 30 मील यहाँ बनता है दिल्ली से, तो यहाँ शायद प्रभु रहते हों, आएंगे कभी इस उम्मीद में। तो जब उनको स्वप्न में दिखाई दिए तो अर्जुन सर्जुन ने जाकर के गरीबदास जी से उपदेश लिया था। जब गरीबदास जी को नाम देने का आदेश कबीर साहब देकर जा चुके थे, ऐसे अर्जुन सर्जुन का उद्धार हुआ और वो बाकी 64 लाख अपना जीवन खो गए, जो प्रभु से विमुख हो गए। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक नादान स्कीम बनाई इन अनजान नकली संतों और महंतों ने, इन नकली गुरुओं ने, कि तुम्हारी तो बात अब दाल गल नहीं रही है और काफी लोग जो है कबीर साहब की महिमा मानते हैं, और अब इसका कैसे यहाँ से छुटकारा करें, कैसे अपनी जान बचाएं, ये मरता भी नहीं क्योंकि शेख तकी ने स्वयं गुंडे ले जाकर और कबीर साहब के कुटिया में कत्ल करवा दिया, कबीर साहब का टुकड़े टुकड़े करवा दिया, ऐसे अलग अलग शरीर दिखे, और खुश हो गया रात्रि के समय, अब मर गया। जब वो अपनी तरफ से कत्ल करके चलने लगे, वो गुंडे और साथ में शेख तकी, कबीर साहब खड़े हो गए और एक शरीर टुकड़े नहीं थे, और कहने लगा शेख तकी और आ जाओ भाई बच्चों, उन गुंडों को आ जाओ बच्चों, आओ दूध पिलाते हैं, ऐसे क्यों जा रहे हो। अब देखा ये आदमी हमने काट दिया था व्यक्ति, और अब जीवित हो गया, सब का पसीने आ गए, उन गुंडों का तो बुखार चढ़ गया, बदमाश जो लेकर गया था, कईयां की टट्टी पेशाब निकल गई और भाग गए। 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा उन बड़ी आत्माओं को, जिनको वो नीच निकम्मा शेख तकी बड़ो बुला के ले गया था। तब कबीर साहब स्वयं गए उनके घर पर और कहा बेटा, मैं ना तो कोई प्रेत हूँ, ना मैं भूत हूँ, और मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। अपने कृपा से उनका बुखार उतारा और उनको सांत्वना दी। किसी ने कम्मे गेला मत लगो भाई, ये तो आप पाप का भागी और तुम्हें और दोषी बना रहा है। वो कहने लगे भगवान, आज के बाद हम इसके साथ कति नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी सब क्रियाएं उनकी फेल हो रही थी, तब ये स्कीम बनाई कि ऐसी ऐसी कहानी कर दें कि ये भाग जाए आता है। ये सोचकर सभी हिंदू और मुसलमानों के वो नकली गुरुओं ने, अधूरे संतों और महंतों ने एक स्कीम बनाई। क्या बनाई कि एक झूठी चट्टी डाल दो कि कबीर भंडारा करेगा, कबीर साहब जो है भंडारा करेगा। अब सब कबीर साहब के नाम तय चिट्ठियां डाल दी दूर दूर संतों और महंतों को, राम व्यक्तियों को, गांव के गांवों को, कि सभी भोजन पाने आना, 3 दिन का भंडारा है, और सबको एक तो दोहर दी जाएगी। दोहर एक बहुत अच्छा लोई हुआ करती, काबल पंजाबी में उसे भूरी कहते हैं, एक एक दोहर देगा, लोई देगा और साथ में सरफी देगा विदाई में। अब ये मेरे जैसे लालची संत जिन्हें यू पता लग जाएगा 10 रुपए मिलेंगे वहां विदाई के, हर साथ में कंबल मिलेगा, कति टूट टूट को सब इकट्ठे हो गए, 18 लाख व्यक्ति, 18 लाख व्यक्ति वहां पर उस निश्चित दिन को पहुंच गए सुबह सुबह, कुछ शाम ना दिए कुछ सुबह। अब रविदास जी और कबीर साहब ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। जब रविदास जी अपने घर से बाहर घूमने के लिए, निपटने के लिए जाता है, जंगल पानी जाता है, तो रास्ते में देखा, जहाँ देखा वहां तक संत साधु भक्त बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अब उन संतों से, उन नकली संतों से आए हुए अतिथियों से रविदास जी ने पूछा कि महात्मा जी आज कैसे आए हो, कोई समागम है क्या। वो कहने लगे, अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं और हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ आज से भंडारा प्रारंभ है। कौन करेगा भंडारा? रविदास जी ने पूछा। उन आगंतुकों ने बताया, उन महापुरुषों ने बताया कि कबीर जुलाहा काशी वाला। रविदास ने पूछा कौन कबीर? अरे वो नीरू का पुत्र कबीर। क्या? रविदास जी ने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई संदेशा गया है? अरे हाँ, देखो सब ने पत्र दिखाए, चिट्ठियां दिखाई कि उनका नाम लिखा है नीरू पुत्र कबीर पुत्र नीरू जुलाहा, और तीन दिन का समागम लिखा है और साथ में दोहर असर भी देगा, तीन दिन का भंडारा लिखा है। तुम्हें नहीं मालूम काशी वालों? अब रविदास जी कहा के निपटन जाते भूल के जंगल पानी जाना भी वापस आ गए। आके कबीर साहब की झोपड़ी में पहुंचे और कहा प्रभु एक महाराज जी आज तो अपना काशी छूटेगी, अब तो काशी छूटेगी अपनी। कबीर साहब ने कहा क्या बात होगी रविदास जी, सुबह सुबह इतने मायूस क्यों हो रहे हो? तुम सारा हाल बताया कि ना जाने कितनी दुनिया आ रही, 18 लाख व्यक्ति बतावे और सबके पास चिट्ठी है, दाता झूठी चिट्ठी डाल रखी है निकम्या ने आपके नाम ते, और दाता बात बिगड़ गई। कबीर साहब कहने लगे रविदास भाई कोई बात ना, ये तो जैसे है ऐसा ही करेंगे, आप आ जा बैठ जा भी अंदर और अंदर से कुंडी लगा ले और बाहर मत निकलना, और रात्रि के समय ना मैं तो अपने बच्चों को लेकर और अपने चला जाऊंगा यहाँ से माता पिता को लेकर। वो बोले बच्चे थे कबीर साहब के, अपने बच्चे नहीं थे, एक लड़की और एक लड़के को मुर्दे को जीवित किया था, उनको फिर अपने पुत्र और पुत्री के रूप में उनकी परवरिश और भक्ति प्रदान की थी, और साथ में मोह बोले माता पिता थे कबीर साहब के, अपने कोई जन्म नहीं था उनका किसी माते। वो नीरू और नीमा को कबीर साहब स्वयं आकर के अपने सतलोक एक बालक का रूप बनाकर कमल के फूल पर मिले थे। कबीर साहब कहने लगे अभी रात में ना निकल जाएंगे और दिन में कोई आएगा तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो चले जाएंगे। रविदास जी भी बैठ गए, कबीर साहब भी बैठ गए, और कबीर साहब ने ऐसे लीला की अपना ध्यान लगाने की, वहां तो शरीर ध्यान लगाए दिखे, और कबीर साहब पहुंचे अपने सतलोक में, और सतलोक में जाकर कहा कि संदेश भेज दिया वहां पे कि कुछ भोजन सामान तैयार करो। जब कबीर साहब स्वयं पहुंचे उससे पहले तो वहां कहते असंख्य बॉडी असंख्य बैलों के ऊपर और ये बने बनाए थैलों में बने बनाए भोजन कचौड़ी पकौड़ी सब आटा और सब कुछ वहां पर घी मक्खन तेज पूंज का भर दिया। तो कबीर साहब ने जाकर वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा वहां के संतों ने वहां की आत्माओं ने कि प्रभु आपके आदेश से ये सब तैयार कर रखा है, ले जाओ कबीर भगवान जितने चाहो उतने ले जाओ। कबीर साहब ने कहा कि 9 लाख बैलों के ऊपर एक बोरे भर के थैले भर के सब सामान के अरवेज दो, और साथ में बंजारे वही सतलोक की आत्मा बंजारे बनकाई वही सतलोक की आत्मा बैल बने कबीर साहब की शक्ति था, और वहां आप स्वयं कबीर परमेश्वर एक केशो नाम का बंजारा बन गया, केशो नाम रख लिया दूसरा रूप बना के वहां काशी के चौपड़ के बाजार में आके और तंबू ला दिए सफेद सफेद तंबू सब जगह, उनमें सामान ला दिया पाड़ की पाड़ पड़ी है ना बहुत ऊंचे ढेर के ढेर पूरियों के कचौड़ियों के फिर माठ के माठ भरे सब्जियों के खीर के हलवे के बर्फी लड्डू जलेबी क्या बात कही, और भंडारा शुरू कर दिया। और उधर कबीर साहब अपनी झोपड़ी में रविदास जी के साथ बैठे हैं, अंदर से कुंडी ला गए, एक पत्र सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के पास भी डाल दिया उन नकली संतों और महंतों ने कि अब पता लग जाएगा वो भगवान कहा करता, अल्लाह कहता था कि अल्लाह का अल्लाह स्वयं आया है, ये अल्लाह की जात है। उधर से सिकंदर लोधी और साथ में वो धार्मिक गुरु तो शेख तकी तो साथ रहा ही करता था, वो भी चल पड़े काशी पहुंच गए। अब जहाँ पर केशव बंजारा अपने तंबू में बैठा था कबीर परमेश्वर अन्य रूप बना के, तो वहाँ कोई पूछता था उससे कि आप कौन हो, कैसे आए हो, कबीर क्या लगता है तेरा, तो वो केशव बंजारा कहता है कि मेरा कबीर साहब, मेरा केशव नाम है, मैं एक बंजारा हूँ और कबीर साहब मेरे पगड़ी बदल आ रहे हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पास पत्र भेजा था कि आप कुछ सामान लेते आइएगा, एक छोटा सा भंडारा करना है। अब ये सुने कि जिस जहाँ पर 18 लाख व्यक्ति भोजन पा रहे हो और उसको तो ये छोटा सा भंडारा कह रही है ये परमात्मा। अब शेख तकी का तो ने देखा ना आके वहां पे भंडारा जोर शोर से चल रहा है, बड़े प्यार थे और जय जयकार हो रही कबीर परमेश्वर की, जो खावे अमृत सतलोक के भोजन में न्यारा आनंद आवे उस अमृत से बने हुए अमृत जैसे भोजन से, और जो कहे ऐसा भंडारा हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, और जय हो उस कबीर की, कौन है वो कबीर ऐसा, उसके दर्शन तो हो जाए कि वैसे भंडारा दिया और सबको असरफी और दोहर दे करके वो केशव बंजारा विदा कर रहा है। अब शेख तकी पर तो गड़ों पानी गिर गया, वो सोच कर रहा था कि भाग्या होगा, वो काशी में नहीं मिलेगा कबीर, ये जो महिमा के भूखे संत और मेहनत होते हैं इन्हें मरना मंजूर, ये अब भी आ जाना कबीर परमात्मा या गरीब दास जी ये नहीं मान सकते, और तो मान सकेंगे बेचारी बूढ़ी आत्मा जो महंत पद पर और संत पद पर गुरु पद पर बैठ गया दूरे, वो नहीं मानना करते, और मानना उन्हें चाहिए पहले ताकि वो पाप के भागी ना हुए, अन्य समाज भी समझ जा। और अब तो बुद्धिजीवी हैं, समझदार भक्तात्मा हैं, सोचना चाहिए इस बात को, और यही तो कमजोरियां हमें सेधती रहती हैं, जब मालिक आता है या अपना कोई सत संदेश वाहक तैयार करता है, अपना कोई मेरे जैसा दास को आज्ञा देता है अपनी महिमा गाने की, उसमें यही बाधक बन जाते हैं, इन भोली आत्माओं को सत मार्ग पर नहीं आने देते, ये दोनों दोषी होते हैं। ऐसे कबीर साहब को फेल किया, ऐसे गरीबदास जी को फेल किया नादान महंतों और संतों ने, अधूरे गुरुओं ने, और नहीं तो आपसे पहले जब स्वयं गरीबदास जी आए थे सारी दुनिया सतगुर के चरणों में होती, और कबीर साहब आए थे तो सारी दुनिया एक रस होती, लेकिन ये नकली वक्त के जो प्रभुता के भूखे जो संत होते हैं ये इस बात ने कभी बिगाड़ा करें, और ये प्रभु के दोषी होते हैं। कबीर सागर में मैंने दिखाया था आपको 28 लाख तो ये नकली संत और महंत नरक में ठोक रखे, कबीर साहब ने बताया और दिखाया, वहां पर देखा कि ये ठोक रखे सारे जो वो गलत काल के दूत बने हुए थे, सब रो रहे हैं बिलख रहे हैं, हमें अक्षमा याचना मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो दाता, आगे आपके संत भक्तों को हम बाधक नहीं बनेंगे। कबीर साहब बोले आगे कि आगे देखेंगे तो भोगो अपना नरक। अब तो हम अपनी महिमा के कारण नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अस्थाई महिमा मिली हुई है संत महंत बनकर नकली, अगर देखियो क्या हाल होगा अपने साथ में। ये है कबीर सागर, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके हमने 4 हिस्से बनवा रखे हैं, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बम्बई। इसमें अंबु बोध देखो, अंबु बोध, अंबु सागर, अंबु सागर के 48 पृष्ठ पर अंबु सागर, ये है नकली कड़हार बनकर जो काल भेजता है ना, नकली दो तीन प्यारी आत्मा जो पुण्यात्मा होती हैं उनको यहाँ भेज देता, जन्म देता, फिर इनको नकली नाम देकर नकली व्याख्या करके, और वो कहते हैं कड़हार का मतलब नाम देने वाले संत कोई भी है चाहे वह। अब ये क्या कह रहे हैं ये कड़हार, नकली कड़हार वचन, ये जो कुंड कुंड में बैठे दूता, ये देखो, तब देखा दूतन का जाई 84 के कुंड बनाई, और कुंड कुंड बैठे यम दूता, देत जीव के कष्ट बहुता, जहाँ जाए हम ठाड रहावा, देख तजीव विने एक तबलावा। अब इन सब नकली संतों को कहते हूँ 28 लाख को ठोक रखा था, और ऊपर लठ लेंगे हम दूत बैठे, और फिर मुझे देख कर मैं वहाँ खड़ा हुआ जाकर मुझे देखते ही सबने विनती की, इन नकली गुरुओं ने जो आज अंडी पाके पर फिरे और सुनते नहीं किसी की, और जो सच्चाई बताओ वो कड़वी लगे उसे उसके दुश्मन बनते हैं। ये काल के प्रेरणाता है। ये कड़िहार, कड़िहार माने जो नाम देने के, अपने आप नाम दे रहे हैं झूठे। मार जीव करे बड़ सोरा, वो पटे वहां पर यम के दूतों से, बांध बांध कुंडन में बोरा, लाख 28 पड़े कड़िहारा। ये नकली गुरु नकली संत और महंत 28 लाख ठोक रखे, बहुत कष्ट ता करत पुकारा, हम भूले स्वार्थ के संगी। ये वो अप पड़े पड़े वहां कह रहे हैं वो नकली संत और महंत, हम भूले स्वार्थ के संगी, अब हमारा नहीं कोई अर्दंगी, हमारा कोई साथी नहीं तो दुख न बटा ले। अर्दंगी माने हमारी स्त्री भी कोई ना। हम तो मृत अग्नि के झारा, हम तो जैसे अग्नि में जला करें ऐसे जल रहे हैं, अंग अंग सब जरत हमारा, कौन पुरुष अब रखे आई, अब मुझे कौन भगवान है जो हमें बचा दे। अर करत गुहार चक्षु ढल जाई, आंखों में पानी पड़े रो रहे। अब कबीर साहब कहते हैं मैं बोला ज्ञानी रूप में परमात्मा नाना रूप बना कर जाते रहते हैं। करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत त्रास भास दिखावा, जीव अचेत बहे अज्ञाना, और गहे शब्द अति कीन गुमाना। वो नकली नाम लेकर अभिमानी में फेरे थे न, वह गुरु वीर संत भी, उनकी ये हालत हुई। 84 दूतन के बांधा, और शब्द डोर 14 यम सांधा, तब ज्ञानी सघन कह मारा, तुम तो जीवन के बटपारा, तुमने तो जीवों के साथ धोखा किया था निकम्यो। और कहते तब ज्ञानी सभी कह मारा, सब उनको गड़ा उड़ा गेर के, नकली संतों को यमदूत तक गड़े गड़े थे। कबीर साहब कहता मन ने भी ठोके उनके, हमारे साधन तुम बरमावा, हमारी जो सच सही भक्ति थी उसको तुमने बरमा दिया उन बोली आत्माओं को, और पल पल सुरती जीव बड़गावा, तुमने तो सब जीवों को बिलगा दिया अर्थात तो उनको डबो दिया। और गही चोटी दूतन किसी आए, यम और दूत विनय तब लाए। कबीर साहब कहे मैंने चोटी पकड़ पकड़ के गड़े हुए घसीटे हुए नकली संत तो बने फिरे थे यहाँ पे। तब दूत वचन, चूक हमारी बख्श कर लीजिए, और मन माने तस आज्ञा कीजिए। अब बख्श तो दाता हमारे को वो नकली संत और वो दूत बने आए थे। हम तो धनी कही जस की ना, हमने तो इस काल के ने जो कहा हमने तो वैसे ही कर दिया। सो हम वचन मान सर लीना, और वही हमने वो, सो माने वही, हमने तो उसी का वो वचन मान लिया जैसे उस काल ने कहा, हम ऐसे ही करते रहे। आपकी आत्माओं को मैंने धोखा दिया। अब नहीं हंस तुम्हारा बिगड़ावा बिगड़ाओ, अब मैं हम आपके हंसों को नहीं नहीं जो ना बिगाड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, अपने आप को गलत नहीं बताओगे जब जाओगे। नाम गए सो लोग सिधारवे, अब हम आपके हंसों को नहीं बिगाड़ेंगे, और वो नाम लेकर बेशक की चले जाओ लोग, और हम भी फिर नाम लेंगे कभी मनुष्य शरीर हो गया था। विनती कीन करे बड़ सोरा, हम तो नाही करत कुछ जोरा, जस चाहो की जो तस ज्ञानी, हम तो हाथ अब तुम्हारे बिकानी। अब किसी तरह करो दाता हमारे पर दया करो। फिर कबीर साहब कहते हैं कि तब ज्ञानी बहुते हरसाई, तब हम बहुते हरसाई, और दूतन बंधन छोड़ो जाई, दूतन बंधन छोड़ो जाई, फल एक जीवन सुख कर दीना, तब संसार गमन हम कीना। अब फल एक जीवन सुख कर दीना। अब कहते हैं कि ये 28 लाख ये फिर देख लो, ये नकली संत जो अधूरे ये तीन मंत्र का नाम नहीं दे पा रहे, और ना उनको अधिकार है, ये अपने ये परमात्मा की वाणी गलत नहीं है। उस समय फिर वहां रोते हुए कहते हैं कि मारत जीव करबड़ सोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा, 8,28,000 पड़े कड़ियारा, ये नकली नाम देने वाले, और बहुत कष्ट करत पुकारा, हम भूले स्वार्थ के संगी, अब हमारे ना ही अर्दंगी, अब हमारे साथ कोई इस दुख न बांटड़िया नहीं। हम तो अमृत अग्नि के झारा, अंग अंग सब जरत हमारा, कौन पुरुष अब राखे आई, करत गुहार चक्षु डल जाई। अब हाथ जोड़ कर कहे तो कबीर साहब कहते हैं आगे सावधान रहना। तो इस प्रकार भाई ये दास ने डर लगन लग गया अब, और यही सोचता हूँ कि हो सके कोई भगवान आत्मा समझ ले इस मेरी बार बार की प्रार्थना को, स्वीकार कर ले भाई, और बख्श दे इन बोली आत्माओं की जान जो लाखों की संख्या में इकट्ठे कर लिए, और ना वेदों का ज्ञान ना अपने कुछ पुराणों का ज्ञान ना अपने अपने मजहब के शास्त्रों को भी ढंग से नहीं समझ रहे, वैसे सुनी सुनाई बातों पर लगे हुए हो। हमने इन शास्त्रों को फिर देखना होगा, अपने प्रभु की मूल वाणी से ही फिर प्रारंभ करना होगा। इस प्रकार अब क्या होता है, अब शेख तकी को तो बड़ा दुख हुआ, सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर जो केशव रूप में वहां बैठे थे तंबू में, उससे पूछा आप कौन हो साहेब, यहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ है साहेब कबीर साहेब। केशव बंजारे रूप में प्रभु बोले कि जो उसका दास जो यहाँ बैठा है, मालिक ने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं उनका पगड़ी बदल यार हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने एक संदेशा भेजा था, एक पत्र भेजा था कि एक भंडारा करना है छोटा सा, कुछ सामान लेते आइएगा, और उसका दास यहाँ बैठा है, वो क्यों कष्ट करे, वो तो अपनी झोपड़ी में है। सिकंदर लोधी ने आंखों में जल भर गया, ए परमात्मा देख बुद्धिहीन लोगों ने किसा जुल्म किया होगा मेरे मालिक के साथ, और कहा कि मैं तो कबीर साहब के दर्शन करके आता हूँ। अब शेख तकी की तो जैसे बहुत जो ना बदनामी होती दिखी, और उसने तो जैसे गढ़ों पानी पड़ गया, बहुत दुखी हो गया, और आंखें टेढ़ी आंखें कर ली। सिकंदर लोधी से कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। सिकंदर लोधी बोला ठीक है फिर जी, आप विश्राम कर लो। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ कर हजारों सैनिक बॉडीगार्ड उनके साथ, और कहां पहुंचा, कबीर परमेश्वर की झोपड़ी पे, जहां कबीर साहब और रविदास जी और कमाल और कमाली सब अंदर अपना कुंडी लाए बैठे। अब जाके क्वाड़ खटखटाए सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने जब दरवाजा खटखटाया, रविदास जी ने कहा कि प्रभु लगता है वो यहां भी आ गए। कबीर साहब बोले कि बस दरवाजा मत खोलना, बोलना नहीं, अपने आप चले जाएंगे दरवाजा पीट के। दूसरी बार फिर खटखटाया और कहा परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो, मैं सिकंदर लोधी आया हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, हे बादशाह सिकंदर, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बदतमीजियां की हैं, आज इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल रखी है कि कबीर भंडारा करेगा और 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, और मेरे पास तो अपने परिवार का ही भोजन मुश्किल से आहार मेरे पास उपलब्ध है, और दाता मैं तो आज रात्रि में निकल जाऊंगा अपने सारे परिवार को लेकर, ये मुझे जीने नहीं देंगे दाता यहाँ पे। सिकंदर लोधी कहता परवरदिगार एक बार दरवाजा खोल दो, आप मुझे नहीं बहका सकते, ए दाता मैं तो आपसे बहुत परिचित हो चुका हूँ, देखो तो आपने कैसा रंग लगा रखा है वहां पर और कैसा भंडारा लग रहा है दाता, एक बार दर्शन तो दे दो आपके दास को। ऐसा जब कहा सिकंदर लोधी ने तो कबीर साहब ने कहा रविदास दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलते ही सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया समेत मुकुट के, और कबीर साहब के चरणों में गिर गए और कहने लगे परवरदिगार एक बार देखो तो चलकर आपने कैसा रंग लाया है, आपकी जय जयकार हो रही है, और सभी भक्तात्मा जो बाहर से आए हैं वो देखना चाहते हैं वो कौन ऐसा महापुरुष जिसने ऐसा एक अद्भुत भंडारा दिया है, हमने जिंदगी में ऐसा इतना लंबा चौड़ा ऐसा भंडारा और ऐसा भोजन नहीं खाया, आपके दर्शन को ललायित हो रहे हैं, आपके दर्शन अभिलाषी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, एक बार उनको दर्शन दे दो मेरे परवरदिगार। कबीर साहब सिकंदर की प्रार्थना पर खड़े हुए, और जो ही झोपड़ी से बाहर आए तो आसमान से फूलों की वर्षा हुई, परम पिता पे आसमान तो फूल अपने आप ने सुगंधित फूल बरसे, और रविदास जी ऐसे चवर करते जा रहे हैं अपने कबीर परमेश्वर पे। तो सिकंदर लोधी ने कहा रविदास जी मुझे दे दो ये चवर की सेवा, आप तो रोज ही करते हो, दाता के साथ रहते हो, ये दास भी कुछ लाभ उठा ले। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को और रविदास जी को हाथी के ऊपर बैठाया, हाथी में कि एक अंबारी होती हाथी के ऊपर, एक बेडरूम सा बना होता है खिड़की का, पर लकड़ी का बना होता था, उसमें राजा लोग चलते थे, चारों तरफ से वो खिड़की खुल जाती थी, उसका दरवाजे ओपन हो जाते थे, ऊपर को ऐसे उठ जाते थे और उसको ऊपर बांध दिया करते और बिल्कुल चारों तरफ से खाली दिखाई देता था, उनके फ्रेम फ्रेम रह जाते थे। राजा ने चारों तरफ से वो खिड़की खुलवा दी और स्वयं कबीर साहब के पास बैठ कर उनके ऊपर चवर कर रहे और कबीर साहब बैठकर चल रहे, सारे बाजार में घुमा दिए। अब सब पूछे ये कौन है, ये कौन है, ये कबीर है, ये पीछे कौन है जो चवर कर रहा है, ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी है, यही तो है वो कबीर जिसने भंडारा किया, ये वो कबीर है, गुलाह कबीर। अब सब जज जयकार कर देख रहे डी ठाठा गए। अब वहां पहुंच गए, सारे बाजार में घूम गए, वो कबीर परमेश्वर फिर हाथी से उतर गए, वहां पहुंच गए जहां अपने दूसरे रूप में केशव रूप में बैठे थे, वहां दो तकत लग गए, एक तकत पर कबीर साहब बैठ गए, एक पर केशव बैठ गया दूसरा रूप में, और सब हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में व्यक्ति बैठ गए वार्ता सुन को। केशव प्रसन्न करे कबीर साहब उत्तर देवे, आठ पैर देख लो कितने हुए, 24 घंटे तक आठ पैर तक गोष्ठी हुई, आठ पैर तक अर्थात सत्संग किया कि हो सके अभी कोई बड़ी आत्मा हमारी महिमा समझ ले, सतलोक की बात ने जान जावे और यहाँ से पीछा छुटवा ले, इस काल तो सारी सृष्टि रचना का प्रमाण दिया बंदी छोड़ने और सब महिमा का ये काल का जाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के ही पुत्र हैं, ये भी भोली आत्माओं को यो काल फंसाए रखता है, इन्हीं के माध्यम से ये इन सब जीवों को उलझा रहा है और वास्तव में परमात्मा मैं हूँ, हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। अब जब सारा भंडारा पूरा हो गया, सब अब अपने विदा हो गए और जितने भी सतलोक से आए हुए बंजारे और बैल थे उनमें सारा बका बचा हुआ सामान तंबू उतार के और डाल कर उन बैलों पर और प्रस्थान कर दिया। सब बंजारे और बैल चल पड़े। जब वो बंजारे और बैल जमुना को पार गंगा को पार करने लगे दरिया को, तो बहुत तेज बह थी ऊपर तक तो पानी नो उछल उछल कर चला था और कबीर साहब की कृपा से बिल्कुल घुटनों से भी नीचे पानी चला गया एक सेकंड में और वो बंजारे और बैल पार हो गए। गंगा के आसपास ही वो चौपड़ का बाजार था क्योंकि इतने पानी की व्यवस्था वहां गंगा जल से हो रही थी पीने की। तो जो ही सब खड़े खड़े देख रहे हैं कि एकदम गंगा नीचे उतर गई और घुटनों पानी घुटनों से भी नीचे बैलों के, और जब पार हो लिए ना जो परली तरफ पहुंच गए सब एकदम गंगा उसी स्पीड में फुल स्विम में कतिनो पटड़ियों का ऊपर न उतरना होगी। अब हैरान रहे कमाल की बात ये फिर एकदम कैसे ऐसे हो गया। इतने में कबीर साहब केशव और सिकंदर लोधी शेख तकीर और सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक वहां विराजमान थे। इतने में कबीर साहब से प्रश्न किया सिकंदर लोधी ने, हे दाता देखा एक सेकंड के बाद कि ना कोई बंजारा दिखे ना बैल, क्योंकि वो इतना लंबे जी 9 लाख बैल और उनके ऊपर वह गुड़ बोरे दरख उनके साथ केस वह एक एक बंजारा लाखों बंजारे भी थे और देखा कहीं पर दिखाई नहीं दिए ना, इतना लंबी लाइन तो 1.5 किलोमीटर तक दिखा। एक मिनट के बाद पल के बाद कोई नहीं दिखा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि परवरदिगार वो बंजारे और बैल कहाँ गए। कबीर साहब ने कहा जहाँ से आए थे वहां गए, ये तो सतलोक से आए थे और ये दास स्वयं ही आया था लेकर के वहां से। इतने में वो केशव जो है कबीर साहब के शरीर में समा गया, देखते ही देखते अकेले कबीर साहब रह गए, केशव नहीं रहा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब ये बातें सुनकर शेख तकी के फिर और ईर्ष्या बढ़ गई। अब गरीबदास जी कबीर साहब की प्यारी आत्मा ये बताना चाहे कि जो बुद्धिहीन नीच व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ी सी प्रभुता पाकर और अपने मेहनताई पद पर आकर प्रभु को भी नहीं स्वीकार कर सकते, यदि प्रभु भी आ जाए ना उनके सामने के मैं भगवान हूँ और तुम बेटा अच्छी तरह भक्ति करो, लेकिन ये वर्तमान में या प्रभुता जीव की छूटे नहीं और इसके छूटे बिना भगवान मिले नहीं। शेख तकी ने क्या कहा कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, क्या किया इसने, महोच्छा किया है इस कबीर ने, महोच्छा किया है। एक तो जौनार होती है जग जौनार युग, खुशी के अवसर पर इंसान खुले जुलते पैसे लगाकर, जैसे कई वर्ष में बच्चा हो किसी का और फिर वो यज्ञ करता है काफी संख्या में व्यक्तियों को बुलाकर और खुले जुलते बड़े हर्ष के साथ पैसे लगाता है, उसको कहते हैं जग जौनार। और कोई किसी के द्वारा कहा गया जैसे कार्य करो, कार्य करते हैं, महोच्छा होता है जो मजबूरी में किया जाए किसी के कहते हैं कि तुम ऐसे कर दो नहीं तो तुम्हें हानि होगी, वो महोच्छा कहलाता है। तो उसमें इंसान मनसा मार कर क्या करता है और कोई खुशी से नहीं करता। तो शेख तकी ने कहा कि इसने तो महोच्छा किया है, और जो पुण्य आत्मा थी, जो भगवान आत्मा थी, अच्छी आत्माएं थी, उच्च आत्माएं, साधु संत वृत्ति के व्यक्ति थे, वो कहते थे भाई कमाल किया है, बहुत ही अच्छा भंडारा किया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, भाई जग जौनार की है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जौनार की और कोई कहे महोच्छा, ये बड़े बड़ाई करते हैं भाई, गाली का डोच्छा। जो स्वयं महान होते हैं वो दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं यदि करने योग्य है तो, और जो स्वयं तुच्छ होते हैं, ओछे होते हैं, अधूरे होते हैं और महिमा उनकी अनजान व्यक्तियों में ज्यादा हो जाती है, वो ओछे बताए, वो दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकते, वो तो गाली निकालते हैं, वो तो कहते हैं ये क्या जाने है, ये तो अनपढ़ है, ये कोई संत थोड़ा ही है। कोई कहे जग जौनार करी, कोई कहे महोच्छा, बड़े बड़ाई करते हैं भाई, गाली का डे ओछा। अब जब ऐसी बातें कही उस परमपिता के बारे में शेख तकी ने, शेख तकी की जुबान खत्म होगी, गुंगा हो गया और बहरा हो गया, उसकी ऐसी दुर्गति हुई। गरीबदास जी कहते हैं ऐसा दोष कहां धरे, ये दगद जमी आसमान, इतना पाप किया उस परमात्मा के साथ, इतना जुल्म किया उसने, अब इतने जुल्म को कहां रखे, अर्थात वो कहर एक दिन टूटेगा उस जीव के ऊपर, उसको फिर वो दंड भोगने पड़ते हैं। 57 कोटि पाप है, अनगिन हत्या अपराधम, संत को सताने का बहुत ज्यादा दुख है। कबीर साहब सच्चाई बताया करते थे और उस समय के वर्तमान महंत और गुरुदेव उन प्यारी आत्माओं को, भोली आत्माओं को फिर गुमराह किया करते, कहते ये झूठ बोलता है, क्या जाने ये गंवार, ये कबीर जुलाहा, ये कोई शास्त्र थोड़ा है जानता, हमने तो विद्याएं पढ़ी हैं, हम काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आए हैं, कहीं नहीं लिखा पितरों को मत पूजो, कहीं नहीं लिखा भूत मत पूजो, श्राद्ध मत निकालो, कहीं नहीं लिखा कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, झूठ बोलता है ये। और अब तो समाज स्याना है, एजुकेटेड है, हिंदी में सरलार्थ हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है। अब देखिएगा गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में, उसमें लिखा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, अर्थात भूत बनेंगे, और पितर पूजने वाले पितरों के पास जाएंगे, अर्थात पितर बनेंगे, पितरों के पास जाएंगे तो पितर बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे तो भूत बनेंगे, और देवी देवताओं के पास जाएंगे तो देवी देवता के पुजारी देवी देवता नहीं उनके भी नौकर बनेंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इधर ये श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को अर्थात पितर बन जाते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये तो वैसे लिखा है इन्होंने, संस्कृत नहीं बनती ऐसे हिंदी संस्कृत, यान्ति माने प्राप्त होते हैं। ये लेखक की अपनी सोच है जैसा इन्होंने। अब यहाँ सीधा है कि पितर पूजने वाले पितर वो होते हैं और भूत पूजने वाले भूत होते हैं और देवी देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। ये आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 से लेकर 20 तक 24 तक आपने देखा, 23 तक। अब ये अध्याय नंबर 7 देखो, इनमें स्पष्ट लिखा है कि पितर भूत प्रेत नहीं पूजना चाहिए, श्राद्ध नहीं निकालने, पिंड नहीं भरवाने, ये मूर्खों की पूजा है। यहाँ देखिए नीचे उन भोग, ये 20 नंबर श्लोक है, उन भोग, ये 12-13 से चला आ रहा है, 13-14-15 और फिर उसके बाद 20 पर आ जाता है। उन भोगों की कामना जिन के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम के आधार धारण करके अन्य देवता, इस संस्कृत की सीधी बताती है, अन्य देवता, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देव माने भगवान, अन्य देवता अन्य भगवानों की, तीनों गुणों से लेकर नीचे की जो पूजा वह अन्य देवता कहलाती है। तो इसमें पूजा करते हैं और इसमें ये लिखा कि ये जो जिसकी पूजा करता है उस बुद्धि को मैं ही वहाँ सेट किए रखता हूँ, भगवान काल कह रहा है। पर उन मूर्खों का ये देखियो, जो काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की श्रद्धा को उस देवता में मैं सती रखता हूँ। आगे देखना, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब जैसे आगे यहाँ देखो, अब काल भगवान कहता है कि मैंने जैसे छोटा मोटी शक्ति इनको दे रखी देवताओं को और ये अक्षिणिक लाभ है। अब ये 23 नंबर में देखो, अध्याय नंबर 7 का 23 नंबर है, इसमें स्पष्ट कर दिया कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है। इन मूर्खों का वो नाशवान फल है, वो नहीं पूजने चाहिए। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त ये जैसे भी चाहे भजे, ये इसकी अपनी सोच है, जैसे नहीं शास्त्र अनुकूल भजे भक्ति करे, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब इस प्रकार ये भगत समाज सारा ही इन अधूरे संतों ने अपने अपने अटकल बीच में अड़ा के, गीता में सही लिखा है लेकिन अपने सोच के आधार पर जो ज्ञान दे दिया वो अधूरा दिया। कबीर साहब ये सत्य बताया करते परंतु इसे अनजान संतों ने उनको स्वीकार नहीं होने दिया और उसका परिणाम ये हो गया कि समाज इतना भक्तिहीन हो चुका है कि सच्चाई को स्वीकार करता ही नहीं। लेकिन अब सियाने हैं, पढ़े लिखे बहन भाई हो गए, बेटे और बेटियां होगी, अब अवश्य स्वीकार करेंगे। अब हमें थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं हम इन देवताओं की पूजाओं को त्याग दें और पितर और भूतों को ना पूजें, श्राद्ध ना निकालें, कहीं हमें हानि ना कर दें। इनके पूजते पूजते परिवार के परिवार विनाश हुए आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सर्वनाश हुआ दिखा दूं। तो और इनके विरुद्ध इनको त्यागने से प्रभु साथ हो जाएगा पूर्ण परमात्मा, जो हमारे कर्मों के दंड को भी काट सकता है। फिर हानि नहीं हो सकती, ज्यादा होनी हो थोड़े में होगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिक में सूली हो फिर काटे में टल जा। पूरे संत की शरण में आने से आने वाली बला टल जाती है। मृत्यु होनी हो, सूली टूटना हो, कोई सजाए मौत होनी हो, एक काटा लग गए और उससे बच जाए तो कुछ भी नहीं रहा, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया समझो कर्म। एक समय की बात है कि कुछ इन नादान संतों के भ्रमित की हुई भोली आत्मा गंगा के अंदर स्नान कर रही थी और साथ में फिर अपने पितरों को जल दे रही थी गंगा जल उठाकर, और वहीं पर ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के ऐसे उसको मंत्र बोल बोल कर और यूं कर रहे थे। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, उन्होंने भी अपना गंगा में प्रवेश किया और ऐसे जल को बाहर फेंकना शुरू कर दिया किनारों पे। जो भक्तात्मा पितरों को जल दे रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे, जल दे रहे थे, उन्होंने देखा कि ये पागल क्या कर रहा है। कहने लगे, ओ जुलाहा कबीर, तू क्या कर रहा है, ये कोई क्रिया थोड़ी है, तू क्या कर रहा है। कबीर साहब ने पूछा, आप क्या कर रहे हो। कहने लगे, हम तो पितरों को जल भेज रहे हैं स्वर्ग में, सूर्य को जल दे रहे हैं और पितरों को प्राप्त होगा हम स्वर्ग में। अच्छा, पितर कहाँ है तुम्हारे के, स्वर्ग में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ बताऊ। कहा बताओ कबीर साहब से। कबीर साहब ने कहा कि मैं बताऊ क्या कर, किस लिए पानी बाहर डाल रहा हूँ। उन साधकों ने पूछा, कहा बताओ। यहाँ मैंने अपने आंगन में एक छोटा सा बगीचा बीजा है और उसको उसकी सिंचाई कर रहा हूँ ऐसे करके। वो हंसे फिर, कहने लगे, ओ बुद्धू, ये पानी तो सारा यही है, इतनी दूर कैसे जाएगा तेरे बगीचे में, ये तो सारा यही गिर रहा है, वहाँ कैसे जा सकता है। कबीर साहब ने कहा कि स्वर्ग, ये सूर्य और स्वर्ग इस पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, लाखों कोस दूर है, और जब तुम्हारा ये पृथ्वी पर डाला हुआ जल वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा आपके देवताओं के पितरों के पास, तो मेरा तो बगीचा आधा किलोमीटर है, वो तो अवश्य ही पूरा भरा हुआ मिलेगा। तब उनकी बुद्धि माया। कबीर साहब बोले, नादानो एक बात सुनो, एक तरफ तक कहो तुम्हारे पितर स्वर्ग पहुंच गए तुम्हारे पूर्वज और फिर उनको जल भेज रहे, यदि वो स्वर्ग में पहुंच गए तो वहाँ जल का अभाव नहीं होगा, सीधी सी बात है, और जल का भी अभाव है तो फिर वो स्वर्ग में नहीं है। बात रही सूर्य को जल देने की, अब सूर्य तो सारी गंगा के ऊपर है, क्या तुम्हारे एक लोटे जल का प्यासा बैठा है क्या। ए नादान कहेंगे, बेकार रखा तुम्हारे को मूर्ख संतों ने। अब ये बात उनके समझ में आ गई, क्योंकि प्रभु सामने खड़ा और सच्चाई बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ये भोली आत्मा तो मान जाती है, पर वो गुरुजी ना मानने दे, तो उन्होंने उसी समय अपनी भूल को स्वीकार किया और नाम ले लिया, अपना कल्याण किया करवाया। एक समय की बात है, सिकंदर लोधी बनारस गया हुआ था और वो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल के वहां रुकते थे, क्योंकि दिल्ली के बादशाह बड़े राजा होते थे, महाराज और सम्राट होते थे सारे भारत के, और ये छोटे छोटे राजा बिजली का पठान तो नवाब थे, और वीर सिंह जो है नरेश राजा थे वहां काशी के, तो राजाओं के पास रुका करते थे, वीरदेव सिंह बघेल के पास रुके हुए थे। तो कबीर साहब और रविदास जी शाम के समय वहाँ वीर सिंह के मकान पर पहुंच गए, वहाँ सिकंदर लोधी भी विद्यमान था और साथ में शेख तकी। क्या होता है, कबीर साहब वहां को आसन दिया, दोनों संत बैठ गए आसन पे। थोड़ी सी देर के बाद कबीर साहब ने अपने पैर पर एक जल का लोटा जो साथ रखा था अपने पैर पर वो पानी डालने लग गए। सिकंदर लोधी ने पूछा, क्या हो गया परवरदिगार आपके पैर का। कबीर साहब ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, जगन्नाथ के मंदिर में एक मेरा सेवक है राम हर्ष पांडा, उसने नाम तो मुझसे दे रखा है लेकिन वो रोजी रोटी के लिए वहां सेवा कर रहा है बेचारा, वो तो अपने ऊपरले से मंत्र वहां सेवा करता रहता है, और उसका पैर जल गया होता ऊपर से भगवान की खिचड़ी उतारा था, प्रसाद बनता जैसे एक टोकना नीचे रखा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये पांच छह ऊपर नीचे रख देते हैं। एक कुछ साइंटिफिक वे मेथड होता है ये, नीचे वाल नीचे लकड़ी जलाई जाती है, पानी गर्म होता होता ऊपर वाला ज्यादा गर्म होता है और ऊपर वाला पक जाता है। जब वो पक जाता है तो ऊपर वाले को उतारते हैं, फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे। जब ऊपर वाले पात्र को प्रसाद उतारने लगा ऐसे वो टेढ़ा हो गया और उसके पैर पर उबलता हुआ प्रसाद बहुत गर्म गिर गया और कहा कि वो उसके पैर पर मैंने जल ये जल वहां पहुंचा दिया भेज दिया। अब ये तो लीला की थी कि जल वहां नहीं पहुंचा, कबीर साहब स्वयं वहां भी थे, क्योंकि परमात्मा अनंत रूप होते हैं, जब चाहे जहां प्रकट हो जाता है। ये तो उनका भ्रम, उनको ये दिखाने के लिए कि मेरे कुछ टिप्पणी करें और ताकि इनका भ्रम दूर हो, इसलिए कहा कि उसकी मैंने वहां आग बुझाई है पैर की। इस बात पर कहने लगे उस शेख तकी और दूसरे बैठे थे, उन शेख तकी के साथी कहने लगा जी झूठ बोलता है ये ऐसे दुनिया को गुमराह कर रहा है, अपनी महिमा झूठी सच्ची बनाकर। अब कौन जाए इतनी दूर पता करने, 800 किलोमीटर बनारस से पुरी है, अब इसकी ऐसे प्रभुता बनती रहती, इसका पता कराओ और नहीं तो इसको सजा दो, फिर झूठ पावत है। अब दो ऊंटों के सवार भेजे, 10 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में। वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि भी कोई रामर हर्ष नाम का पांडा है, पता किया जी है। उस राम हर्ष पांडा से पूछा कि कोई तुम्हारे साथ कोई घटना घटी उस दिन, कहा जी क्या हुआ कि मेरे ऐसे में प्रसाद उतार रहा था प्रभु का और मेरे पैर पर उबलता हुआ प्रसाद गिर गया बहुत तेज, और ये थी तो उसने पूछा कि किसने वो ठीक तेरे पैर की रक्षा की, मेरे कबीर परमात्मा ने, मेरे कबीर गुरुदेव ने। कौन कबीर? काशी वाला कबीर। वो कहा था कि ये मेरे पास खड़े थे और बर्फ का जल, जैसे बर्फ का जल होता ना ऐसा मेरे पैर पर डाल दिया ठंडा ठंडा और तुरंत आराम हो गया मुझे, नहीं तो उस दिन मेरी मृत्यु थी। औरों से पूछा उन सिपाहियों ने, सब ने यही बताया कि हम ये उपस्थित थे जब इसने चिल्लाया तो उसी टाइम भाग कर आए सारे। तो वहां पर वो कबीर परमेश्वर कहाँ है, कहाँ था कि यही खड़ा था, वो तो रोज आता है यहाँ पर दर्शन देने के लिए, रोज कहाँ प्रतिदिन आता है। अब पूरी वार्ता लिख कर और अंगूठे दस्तक करवा कर दोनों सिपाही आ गए, आकर बताया जो कि तुम सत पाई। सिकंदर लोदी ने पैर पकड़े, दाता हम तो बुद्धिहीन जीव हैं, आपके ऊपर विश्वास कर लेते, अब हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। कबीर साहब बोले कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो भी तुम्हारा भला है, अच्छा है, ना जाने जब भी ये हमारी बुराई अंधेरा हट जाए, ज्ञान अंधेरा वही ठीक है। इस प्रकार कबीर परमेश्वर ने ना जाने कितनी लीला की, पर हम अनजान बहुत हो गए, अनजान बना दिया दूरे ज्ञान ने। अब सच्चाई कहें कोई मानता नहीं, झूठ को स्वीकार किए फिरे, जो झूठ बोलते हैं शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं वो संत तो महान कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, और जो सत शास्त्र के अनुसार हमारे वेदों के अनुसार बताए उसको कहें तो गंवार है, वैसे झूठ बोल रहे। सच्चों को तो झूठ बतावत और झूठों का एतबार निरंजन दन तेरा दरबार। एक समय की बात है, एक तोतादर नाम का स्थान था जहां पर इन विद्वान पुरुषों का, संतों का सम्मेलन था। उसमें रामानंद जी का बोलबाला बहुत था। रामानंद जी एक ब्राह्मण विद्वान पुरुष थे, वो कबीर साहब के चरणों में शिष्य बन गए, चरणों में आ गए थे। वैसे तो कबीर साहब ही रामानंद जी के शिष्य थे, लेकिन जब सतमार्ग सतलोक देख लिया था, पता लग गया था कबीर परमेश्वर है, वास्तव में यही भगवान है, तो रामानंद जी ने अपने हृदय से कबीर साहब को भगवान और गुरु मान लिया था और नाम देना बंद कर दिया था। लेकिन रामानंद जी की महिमा फिर भी विद्यमान थी। रामानंद जी को आमंत्रित किया उन संतों ने और महंतों ने ये आपस में ऐसा ही करते हैं कि वो उनको बुलावे उनको बुलावे, उसको वो 1100 रुपये दे, उसको फिर 1200 2100 दे, फिर वो अगली बार उसको 2100 दे। तो ये ऐसे इनका आपस में बना हुआ होता है। जैसा भी, तो रामानंद जी को आमंत्रित किया। अब रामानंद जी कबीर साहब को साथ रखते थे। अब जब सम्मेलन में पता चला कि रामानंद जी के साथ कबीर साहब आए हैं और वो दुल्हा हैं, छोटी जाति के हैं, तो उन विद्वान पुरुषों ने, ऊंची जाति वालों ने, पांडवों ने क्या स्कीम बनाई कि यदि हम मना करेंगे कबीर अंदर नहीं आवे हमारे भंडारे में तो रामानंद जी रुष्ट हो सकते हैं, विद्वान पुरुष ये ब्राह्मण है, ऐसा करें कि ये रामानंद जी भी नाराज ना होए और कबीर भी हमारे इन ब्राह्मणों वाले भंडारे में ना आवे। दो लंगर लगा रखे थे, एक तो आम जनता के लिए और एक केवल संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि जो यहाँ इस भंडारे में आओगा उससे वेदों का एक एक मंत्र सुन लेंगे, जो नहीं सुना सकेगा उसको कहेंगे तू उधर जाओ। और कबीर अनपढ़ है, गंवार है, ये मंत्र नहीं सुना सकता वेदों के, और फिर ये यहाँ से आपे खिसक जाएगा, दूसरी तरफ भोजन पा लेगा, हमारी इज्जत, हमारी जो है ना भंडारा भ्रष्ट नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा ही तैयारी कर ली। सत्संग हो रहा था और सत्संग में कथा सुना रहे थे भीलनी और राम की। कहते हैं सबरी ने भगवान राम के लिए कई हजार वर्ष तक जो है ना इंतजार किया, प्रतीक्षा की, और जब श्री राम आए अपने झूठे मुंह के बेर, पहले बेर स्वयं खाकर देखा चाखे और फिर भगवान को खिलाए, भगवान ने रुचि रुचि खाए। और सबरी काली कलूटी, दांतों वाली, आंखों में ढीडे कीचड़ भरा है, और नाना ना धोना भोली सी थी, और भगवान ने छुआ छात नहीं किया, भगवान ने प्यार से गले लगाया। और फिर कथा सुनाते, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा हो साधु भी ना। अब सत्संग समापन हुआ, भंडारा प्रारंभ हुआ। जिन्होंने उस भंडारे, मुख्य भंडारे में आना था, उनकी लाइन लग गई मंत्र सुनाने के लिए। विद्वान पुरुष फटाफट मंत्र सुनाते हैं वेदों के और चले जा रहे हैं।